नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन है और आप सुन रहे हैं झारखंड मोबाइल वाणी। आज एक कार्यशाला आयोजित हो रही है कुपोषण के मुद्दे को लेकर। हमारे साथ हैं जेम्स हेरेन जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं और मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी स्वागत है आपका।
नमस्ते
जी, आप अपना परिचय दें एक बार।
मेरा नाम जेम्स हेरेन है और झारखंड में भोजन के मुद्दे पर काम करते हैं। एक नेटवर्क है भोजन का अधिकार अभियान झारखंड, और ये सेंट्रली भी रोजी रोटी अधिकार अभियान के साथ में टैग है, उसके साथ जुड़ करके काम करते हैं।
अच्छा जी, तो आज ये कार्यशाला जो है ये राइस फोर्टिफिकेशन, मतलब जो चावल में कुपोषण हटाने के लिए सरकार एक जो पोषण युक्त चावल दे रही है, इसके बारे में कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से आप लोगों को इसके बारे में पता चला, थोड़ा विस्तार से बताएं।
मार्च का महीना था जिस समय यहाँ झारखंड में जो भोजन का अधिकार अभियान झारखंड का राज्य सम्मेलन हो रहा था इसी कैंपस में, तो उस समय जो पार्टिसिपेंट आए थे मार्च महीना में ही, उन लोगों को उस तरह का चावल मिला हुआ था। ये घटना इंसिडेंट था आपका खूंटी जिला के कर्रा ब्लॉक का पहाड़ टोली गांव में, तो वहाँ उसको खाने से लोगों को काफ़ी असहज महसूस हुआ, अलग अलग तरह के तकलीफें हुई, किसी को अनपच हुआ, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ और किसी को उल्टी भी हुआ, और कई लोग कई कई दिनों तक उस खाना को लेकर के पेट की असुविधा से परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे उस बात को उन्होंने सम्मेलन में रखा कि इस तरह का चावल, और कुछ नमूना भी लेकर के आए थे। तब हम लोगों को सोचना पड़ा कि आखिर किस तरह का चावल ये है। तो ठीक इसके बाद में अप्रैल महीना में 18 तारीख को रायपुर में राष्ट्रीय रोजी रोटी अधिकार का मीटिंग था, उस अप्रैल 2022 में, तो उसी समय इस बात को रखा गया। तो वहाँ देश भर से लोग आए थे, जैसे डॉक्टर वंदना कविता कुरुंगति जो बेंगलोर में रहती हैं और किसानों के मुद्दे पर काम करती हैं, तो उनके माध्यम से ये जानकारी हुई कि नहीं 2019 से ये इस देश में चल रहा है प्रयोग। और 2021 का जो अगस्त महीना था, 15 अगस्त, उसमें लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया कि हम आने वाला 2024 तक 100% जो सरकारी खाद्य स्कीमें हैं, जैसे राशन दुकान है, मिड डे मील है, ICDS सेंटर है, तो ये खासकर तीन स्कीमों में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और 100% फोर्टिफाइड चावल हम वितरण सुनिश्चित करेंगे। इससे जो देश में कुपोषण की समस्या है उसको दूर करने में बहुत बड़ा मदद मिलेगी, बहुत बड़ा योगदान होगा, ये उनका मानना है। तो ऐसा करके उन्होंने शुरू किया है।
तो फोर्टिफाइड राइस मतलब किस तरह का ये चावल होता, थोड़ा बता सकते हैं आप?
फोर्टिफाइड चावल एक तरीके से उसको चावल कहना भी कितना सच होगा, कितना समीचीन होगा, क्योंकि वो बेसिकली चावल नहीं है। पहले तो उस चावल को मिल में तोड़ा गया, उसको आटा बनाया गया और उसके ऊपर में माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल करके जिंक और फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये तीन लौह तत्व उसमें मिलाया गया है और फिर वापस उसको मशीन के जरिए चावल का रूप दिया गया है। तो ये चावल का डिस्क्रिप्शन है, और इसको जो मिलाने का अनुपात है वो 1% है। कहने का मतलब है कि एक क्विंटल नॉर्मल चावल रहेगा तो 1 किलो ये फोर्टिफाइड चावल मिला करके इस तरह के खाद्य स्कीमों में दिया जाने लगा है।
जिस पहाड़ टोली गांव की आप बात कर रहे थे, क्या वहां पर ये सूचित करके बांटा गया, बिना सूचना दिए बांटा गया या ऐसे ही कुछ?
जिस समय बांटा गया था उस समय तक किसी को कोई सूचना नहीं थी। जब लोगों को खाने के बाद असहज महसूस हुआ, तो चूंकि झारखंड एक पेशा इलाका है और वहाँ विलेज हेड का सिस्टम है, तो गांव के लोगों ने विलेज हेड को अपने गांव के ग्राम प्रधान को बताया कि इस तरह का चावल डीलर के माध्यम से मिला है जो हम लोग के लिए सही नहीं लग रहा है और हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं। तो फिर उस ग्राम प्रधान ने प्रशासन को खबर किया और बाद में प्रशासन आकर के सफाई देने लगा कि नहीं, ये विटामिन युक्त चावल है, इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों का जो प्रतिक्रिया है, जब एक बार उनके मन में बैठ जाता है कि नहीं, इसको खाने से कोई हानि हो सकती है और लोगों को असहज भी हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हुई,
ऐसा ही भ्रांति है जिसको लोग प्लास्टिक चावल का नाम दे रहे हैं
इस इलाके में या अभी झारखंड में। पिछले 2 महीने से हम लोग अलग अलग हिस्सों में घूमे और लोगों से प्रतिक्रिया भी जाने, तो लोग इसको प्लास्टिक चावल के नाम से पूरा प्रचारित कर रहे हैं। बेसिकली प्लास्टिक चावल नहीं है, लेकिन चूंकि वो देखने में नॉर्मल चावल से अलग है, और लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करके देखा कि ये चावल क्या है। तो कुछ लोगों ने जला करके देखा, तो जला करके जलाने से वो एक दूसरे के साथ में सट जाता है, जबकि नॉर्मल चावल आपका फूटता है लावा की तरह, तो उससे वो भी प्लास्टिक का एक तरीके से गुण दिखता है जलाने के क्रम में भी, और उसका जो जलने के बाद में सुगंध जो हुआ वो भी अलग तरह का प्लास्टिक की तरह सुगंध हुआ। तो ऐसे करके कई प्रयोग के बाद लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नहीं, ये प्लास्टिक चावल है।
तो इसमें आपकी चिंताएं क्या है? जैसे सरकार का तर्क है कि ये कुपोषण मिटाने के लिए पोषण युक्त चावल वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। आपकी चिंताएं, आप रोजी रोटी अभियान से जुड़े हुए या नेशनल लेवल पे, जब आप लोगों ने, जैसे आप डॉक्टर वंदना और लोगों की जो बात कर रहे हैं, क्या चिंताएं निकल के आ रही हैं आपको, क्या इसमें दिक्कतें समझ में आ रही हैं?
देखिए, भारत सरकार का ही एक इकाई है, एक अथॉरिटी है, FSSAI उसको बोलते हैं, और वो 2018 में एक रेगुलेटरी पास की है, और उस रेगुलेटरी में इस तरह के फोर्टिफिकेशन का जिक्र है, और उस रेगुलेटरी में क्लियर लिखा हुआ है कि दो तरह के बीमारी, एक बीमारी जिसका नाम है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया में कहा गया है कि इस तरह के फोर्टिफाइड चावल को किसी न किसी चिकित्सक के सलाह के बाद ही देना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देना है,
ठीक है।
और दूसरा बीमारी है सिकल सेल, उसमें बिल्कुल मना करता है कि ये चावल नहीं खाना है। और ये दोनों बीमारी एक हिसाब से आदिवासी इलाकों में जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वो काफी गंभीर है, मतलब 20% तक में है।
क्या इस तरह का कोई सर्वे है कि यहाँ पर इतने थैलेसीमिया पीड़ित हैं या नहीं है? सरकार कैसे बांट रही है, मतलब क्या
झारखंड में यही दिक्कत है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में इसकी जांच की सुविधा नहीं है, सिर्फ एक अंदाज से, जैसे कि किसी के शरीर में खून नहीं बनता है तो किसी का 3 महीना में, किसी के 1 महीना में, किसी का 15-15 दिन में वो खून चढ़ाना पड़ता है, तो यही उसका लक्षण है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में इसकी जाँच की सुविधा नहीं है। तो चिंता हमारी ये है कि जब इतना बड़े स्केल में आदिवासियों में आनुवांशिक बीमारी मौजूद है और उनको पता नहीं है कि हमको ये नहीं खाना है या किसी डॉक्टर की सलाह से खाना है, तो बेचारे कहाँ डॉक्टर को ढूंढेंगे या कहाँ अपनी जांच कराएंगे? वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि लोगों को जांच नहीं मिल पाएगी। रिम्स में हम लोग जब फैक्ट फाइंडिंग के दौरान गए थे, उस समय पता चला था कि रिम्स के लोगों ने एक आंकड़े बताए थे कि 60 से 70 हजार झारखंड में जो केसेस हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के, वो मौजूद हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं और उनको क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगा इस चावल के अलावे, उनके पास तो कोई इस तरह का व्यवस्था सरकार ने किया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में आपका मिड डे मील बनता है, तो वहाँ तो ऐसा व्यवस्था नहीं है कि इतने बच्चे हमारे सिकल सेल या थैलेसीमिया की बीमारी है उसके लिए हम अलग खाना बनाएंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए फोर्टिफाइड चावल बनाएंगे, ना वहाँ व्यवस्था है, ना आंगनबाड़ी में इस तरह का स्क्रीनिंग है। इवन हम लोगों ने तो WCD के डायरेक्टर से मिले थे, तो उनके पास भी कोई आंकड़े नहीं है कि कितने बच्चे HDS में इस तरह के बीमारियों से प्रभावित हैं। तो नॉर्मल तरीके से जबरदस्ती लोगों को खिलाया जा रहा है, तो ये एक हिसाब से मेडिसिन को मेडिसिन की तरह लोगों के शरीर में जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कि जो बीमार नहीं है उसको भी आप जबरदस्ती मेडिसिन देंगे तो उसके शरीर में उसका रिएक्शन होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने कहा कि आपके छत्तीसगढ़ में आप लोगों का कार्यशाला हुआ था, तो क्या और राज्यों में इस तरह की शिकायतें आपको पता चली या इस तरह के प्रयोग किए जा, सो कॉल्ड प्रयोग ही कहा जा सकता है, कि क्या इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है?
अभी राष्ट्रीय टीम यहाँ छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कर रही है 13 तारीख को, 13 तारीख से शुरुआत की है, मैं भी आज हमको लगता है लास्ट है, तो वहाँ से भी इस तरह की चीजें निकल करके आई है। फिर 11 तारीख को हमारी राष्ट्रीय एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें उड़ीसा के साथियों ने बताया था कि जो समर वोकेशन होना हो रहा था उसके पहले वहाँ पर भी स्कूलों में बांटा गया है, तो स्कूल में बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस हुआ था, वहाँ बच्चे और उनके अभिभावक वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ में पूरा एक तरीके से हंगामा किए हुए थे, और पश्चिम बंगाल से भी ये खबरें आ रही है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से कोई चीज़ को फैसला लेते हैं वो एक हिसाब से अडिग फैसला की तरह पूरे देश में जबरदस्ती लागू करते हैं।
अच्छा, तो मान लीजिए बात करते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो क्या राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के भी दायित्व बनता है, क्या उनको या उनके मंत्रियों को ऐसी कोई जानकारी, या DC लेवल के, DC स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे किसी अधिकारी को इसके बारे में कुछ पता है? आपने आपने जो आप जो कह रहे हैं कि आपने फैक्ट फाइंडिंग की, उस फैक्ट फाइंडिंग में क्या आप लोगों ने मंत्रियों से या अधिकारियों से मिले, उससे कुछ पता चला?
फैक्ट फाइंडिंग के दौरान हर स्टेक होल्डर से हम लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की है। गांव का आशा सहिया वर्कर से लेकर के आंगनबाड़ी वर्कर से लेकर के पीडीएस डीलर और मिलर है, वहां से लेकर के स्टेट के जो एक्स मिनिस्टर थे माननीय सरयू राय, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई उस मुद्दे को लेकर के। फिर जो वर्तमान खाद्य मंत्री हैं माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई। तो ये उनको बिल्कुल भी इस संबंध में जानकारी नहीं है। जब हम लोग ये फैक्ट और इन चीज़ों को लेकर के जमीन के हालात उनको बताए, तब वो थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने एक आश्वस्त किया है कि स्टेट की तरफ से हम सेंट्रल को लिखेंगे कि इस तरह का चावल कम से कम हमारे झारखंड में वितरण बंद किया जाए। ये उन्होंने आश्वासन दिया है, बाद में हम लोग उसको फॉलोअप नहीं कर पाए हैं। और फिर जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ भी उस दौरान मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी हमारे जैसे लोगों के साथ में एक सुझाव मांगा था कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, क्या चिंता है, उससे संबंधित है कोई आप एक कंप्लेन लेटर की तरह हमको दो, जिससे कि हम एक आधार बनाए कि यहाँ के पब्लिक या यहाँ का जनता इस तरह के चावल से वाकिफ नहीं है और इसको नहीं स्वीकार कर रही है, तो हम सेंटर को लिख सकते हैं। तो उस लेवल का कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है। और इंटर डिपार्टमेंट, खासकर आपका WCD है, तो उसके भी तो SDS में बच्चे हैं, तो उनकी भी तो चिंता होना चाहिए। उसी तरीके से मिड डे मील जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, उसकी भी तो एक चिंता होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चों को इस तरह खिलाया जा रहा है, पता नहीं कब किस तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने कम्युनिकेशन का मेथड समझने की कोशिश की है कि कोई चिट्ठी पत्री आया है, कोई नोटिफिकेशन हुआ है, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, बस जबरदस्ती अंधेरे में रख करके इस तरह के चावल का जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो काफी चिंता का विषय है राज्य के लिए।
धन्यवाद जेम्स जी। आप सुन रहे थे झारखंड मोबाइल वाणी। नमस्कार, मैं राजीव।